नमस्कार भारत, 21 सितंबर शनिवार, मैं हूं मोहम्मद शाहिद। जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई उत्पाद और सेवाओं पर घटाया गया टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स में छूट पर कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार से पूछे कड़े सवाल।
कॉरपोरेट टैक्स की दरों को 30% से कम कर 22%, 25% से कम कर 15% से 1,45,000 करोड़ सालाना का नुकसान होगा।
जानेंगे मानवाधिकार कार्यकर्ता गुलालाई इस्माइल ने कैसे पाकिस्तान छोड़ा।
उनको अंदाजा हो गया था गुलालाई इस्माइल उनकी जान को खतरा है और 3 महीने तक वो बिल्कुल गायब रही और कल जो है ना ये खबरें आई कि वो अमेरिका पहुंच गई है।
होगी मुर्तजा भुट्टो पर विवेचना भी, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। भारत सरकार ने कॉरपोरेट कंपनियों को टैक्स में छूट देने के फैसले के बाद शुक्रवार को कई उद्योगों को जीएसटी में भी राहत दी। गोवा में हुई जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक में कई बड़े फैसले लेते हुए होटल और वाहन उद्योग जैसे कुछ क्षेत्रों को टैक्स में राहत दी गई है, जबकि कैफीन वाले पेय पदार्थों और रेलगाड़ी के डिब्बों पर जीएसटी बढ़ाया गया है। अमेरिका ने सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में अपने सैनिकों और मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती का फैसला किया है। अमेरिका का कहना है कि हाल ही में सऊदी अरब की तेल रिफाइनरी पर हुए हमलों के बाद ये कदम उठाया जा रहा है। अमेरिका इन हमलों के लिए ईरान को जिम्मेदार बता रहा है, जबकि ईरान का कहना है कि इनमें उसकी कोई भूमिका नहीं है। अमरीकी रक्षा मंत्री मार्क एस्पर ने कहा है कि ये कदम सुरक्षा की दृष्टि से उठाया जा रहा है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लगा है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर जो बाइडन के बेटे की जांच करने का दबाव बनाया था। जो बाइडन 2020 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारी के प्रबल दावेदार हैं। अमरीकी मीडिया ने एक शिकायत के आधार पर दावा किया है कि ट्रंप ने व्लोदिमिर जेलेंस्की को फोन करके जांच करने के लिए कहा था, लेकिन ट्रंप का कहना है कि शिकायतकर्ता राजनीति से प्रेरित है।
It's a partisan whistleblower. It shouldn't even have information.
शिकायतकर्ता पक्षपाती है, उसके पास जानकारी नहीं है। मेरी कई नेताओं से बात होती है और वो हमेशा उपयुक्त रही है, अच्छे स्तर की रही है। मैं जो भी करता हूँ इस देश के लिए करता हूँ। मैं देश के लिए पूरी मजबूती से लड़ता हूँ। ये छिछले राजनीतिक हथकंडे के अलावा और कुछ नहीं है। ये थे अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। इराक के करबला शहर के पास हुए बम धमाके में कम 12 लोग मारे गए हैं। रिपोर्टों के अनुसार सुरक्षा चौकी के पास सड़क के किनारे रखे एक उपकरण के माध्यम से धमाका करके यात्री बस को निशाना बनाया गया। इस महीने आशुरा त्यौहार के चलते बहुत से शिया मुसलमान करबला पहुंच रहे हैं। यमन के हूती विद्रोहियों के एक अधिकारी ने कहा है कि अगर सऊदी अरब के नेतृत्व वाली गठबंधन सेना हमले करना रोकती है तो वो भी ड्रोन और मिसाइल हमले करना बंद कर देंगे। हूती विद्रोहियों के राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख महदी अल मसद ने कहा,
نعلن عن وقف استهداف أراضي المملكة العربية السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية.
هم اعلان کرتے ہیں کہ ہم سعودی عرب کے علاقوں پر ڈرون میسائل یا کسی بھی طرح کے حملے روک دیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ وہ بھی بدلے میں ایسا کرتے ہیں یا پھر اس سے بہتر قدم اٹھاتے ہوئے یمن پر ہوائی حملے روکنے کی گھوشنا کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہماری پہل پر کوئی پرتکریا نہیں آئی تو ہم پرانے رخ پر لوٹ سکتے ہیں۔ युद्ध का जारी रहना किसी के भी हित में नहीं है और अगर किसी को नुकसान होगा तो हमें नहीं, हमारे विरुद्ध एकजुट हुए देशों को होगा। ये थे हूती विद्रोहियों के नेता महदी अल मसद के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। मिस्र की राजधानी काहिरा के तहरीर चौक के पास प्रदर्शनकारियों के छोटे समूह जुटे हैं जो सरकार विरोधी नारे लगा रहे हैं। इस तरह का नजारा मिस्र में दुर्लभ है। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी से सत्ता छोड़ने और सैन्य शासन खत्म करने की मांग की है। पुलिस ने इन्हें हटाने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। 2011 में तहरीर चौक पर हुए प्रदर्शनों के बाद यह पहला मौका है जब इस तरह के प्रदर्शन एक बार फिर हो रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय विरोध प्रदर्शन दिवस को प्रेरित करने वाली स्वीडन की एक किशोरी और पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थुनबर्ग ने न्यूयॉर्क में एक बड़ी सभा को संबोधित किया। ग्रेटा थुनबर्ग ने जलवायु परिवर्तन पर सबसे बड़े प्रदर्शन में भाग लेने के लिए लोगों की प्रशंसा की है। इसके साथ ही उन्होंने इसे बदलाव की लहर भी बताया। बीबीसी समाचार।
नमस्कार स्वीकार करें मोहम्मद शाहिद का। ये बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत है। इस कार्यक्रम को रेडियो के साथ साथ आप हमारी वेबसाइट bbchindi.com और मोबाइल ऐप पर भी लाइव सुन रहे हैं। कल बीता शुक्रवार का दिन देश की सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को लेकर मोदी सरकार की अहम घोषणाओं का दिन रहा। एक ओर जहां दिन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कॉरपोरेट कंपनियों को टैक्स में छूट देने की घोषणा की, वहीं देर रात गोवा के पणजी में हुई जीएसटी काउंसिल की 37वीं बैठक में कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरें कम कर दी गईं तो कुछ पर बढ़ा दी गईं।
The rate reduction on hotel accommodation service is as follows. The transaction value is what I'm going to read out per unit per day. So if there is a transaction value per unit per day.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रही थी कि 1000 रुपए से कम किराए के होटल के कमरों पर कोई जीएसटी कर नहीं लगेगा। वहीं 1000 से 7500 रुपए के होटल के कमरों पर जीएसटी की दर 18% से घटाकर 12% कर दी गई है। वहीं कैफीन वाले पेय पदार्थ पर जीएसटी की दर 18% से 28% कर दी गई है और साथ ही 12% अतिरिक्त सेस लगाया गया है। इसके अलावा समुद्री नौकाओं के ईंधन, ग्राइंडर, इमली और कम कीमत के रत्नों पर टैक्स की दर घटा दी गई है। दूसरी ओर कल ही दिन में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुस्ती का सामना कर रही अर्थव्यवस्था को ताकत देने के लिए घरेलू कंपनियों और नई विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स को 30% से घटाकर 25.17% करने का ऐलान किया था। मोदी सरकार की ओर से कॉरपोरेट कंपनियों को टैक्स में छूट दिए जाने पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने कहा है कि इससे भारत सरकार को 1,45,000 करोड़ का नुकसान होगा और इसकी भरपाई कैसे होगी? सुनिए बीबीसी संवाददाता कुलदीप मिश्र की यह रिपोर्ट।
वी टुडे प्रपोज टू स्लैश द कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स फॉर डोमेस्टिक कंपनी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल जब घरेलू कॉर्पोरेट कंपनियों को टैक्स में छूट की घोषणा की तो शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए लिखा कि इससे मेक इन इंडिया को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, पूरी दुनिया से निजी निवेश का आकर्षण बढ़ेगा, निजी क्षेत्र की स्पर्धा बेहतर होगी और नई नौकरियां पैदा होंगी। ये फैसला 130 करोड़ भारतीयों के लिए हर हाल में शानदार नतीजे लेकर आएगा। लेकिन कांग्रेस को नहीं लगता कि यह फैसला शानदार नतीजे दे सकता है। सरकार की घोषणा पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। पहले राहुल गांधी ने ट्विटर पर इसे अमेरिका में मोदी और ट्रंप के साझा जलसे से जोड़ा, फिर शाम को कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था को नौसिखियों की तरह चला रही है।
कॉर्पोरेट टैक्स की दरों को 30% से कम कर 22%, 25% से कम कर 15% से 1,45,000 करोड़ सालाना का नुकसान होगा। प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी देश को बताएं कि ये पैसे की भरपाई 1,45,000 करोड़ के वित्तीय घाटे की भरपाई कहां से होगी?
कांग्रेस सवाल पूछ रही है कि इस तरह की राहत कॉरपोरेट कंपनियों के बजाय आम नौकरी पेशा लोगों को क्यों नहीं दी गई। ये बात जाहिर है कि देश के विकास दर अब घटकर 5% पर है, एक आर्थिक सुस्ती है और बाजार में पैसा खर्च नहीं किया जा रहा। आर्थिक मामलों के जानकार आशुतोष सिन्हा बताते हैं कि कई और देश भी ट्रेड वॉर को देखते हुए कंपनियों को टैक्स में छूट दे रहे हैं ताकि निवेश की घटती रफ्तार पर काबू पाया जा सके।
अभी स्थिति यह है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है कंपनियों द्वारा, तो कंपनियों के लिए किसी भी देश में इन्वेस्ट करने के लिए अभी स्थिति यह है कि कंपनियां चाह रही हैं कि उन्हें टैक्स दर कम लगे जिसमें वो ये निवेश कर सकते हैं जिस भी देश में। इसीलिए देखिए दूसरे देशों में भी टैक्स की दर कम कर रहे हैं। अगर टैक्स दर कम होने से देश में निवेश बढ़ सकता है, वही कोशिश की है निर्मला सीतारमण जी। करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का सरकार को इससे नुकसान हो रहा है। ये 1.5 लाख करोड़ सीधे कंपनियों के मुनाफे में जाएगा। मोटे तौर पर इसको अगर एक लाइन में कहना होगा तो हम ये कह सकते हैं।
हालांकि सरकार के फैसले का निवेशकों और बाजार के दिग्गजों ने स्वागत किया है। बाजार के जानकारों का मानना है कि सरकार का ये फैसला कंपनियों का खर्च घटाएगा और इस तरह आगे चलकर निवेश को आकर्षित करेगा। शेयर बाजार के विशेषज्ञ सुनील शाह कहते हैं,
जो 5 साल से उम्मीद थी कि कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती आएगी, वो रिस्ट्रिक्ट रखी थी 300-400 करोड़ की कंपनी तक, उसके ऊपर के टर्नओवर को कॉर्पोरेट टैक्स में कोई कटौती नहीं थी। अब जाके इन्होंने ये अनाउंस किया है, स्टॉक मार्केट में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको ये डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगी, पॉजिटिव होगा उनके लिए, उसमें फर्क आ जाएगा और वो अच्छे दिखेंगे।
बाजार की सलामी के बावजूद कांग्रेस ने सरकार के इस फैसले का खुलकर विरोध किया है और इसे कॉरपोरेट कंपनियों बनाम नौकरी पेशा भारतीयों की बहस में तब्दील करने की कोशिश की है। कुलदीप मिश्र, बीबीसी दिल्ली।
रुख करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान का, जहां सेना के आलोचक और मानवाधिकार कार्यकर्ता गुलालाई इस्माइल ने कई महीनों तक छिपकर रहने के बाद पाकिस्तान छोड़ दिया है। गुलालाई अब अमेरिका में हैं। पाकिस्तान प्रशासन लंबे समय से उनकी तलाश कर रहा था और उनके यात्रा करने पर भी पाबंदी लगाई गई थी। पाकिस्तानी प्रशासन का आरोप है कि वो राज्य विरोधी गतिविधियों में लिप्त थीं और हिंसा भड़का रही थीं। इस मामले पर और जानकारी के लिए कुलदीप मिश्र ने संपर्क किया पेशावर में मौजूद बीबीसी उर्दू संवाददाता रिफतुल्ला खान से।
जी, ये जो गुलालाई इस्माइल है ये एक राइट एक्टिविस्ट है, एक खातून है, इसकी तकरीबन कोई अबाउट 30 ईयर्स इसकी कोई एज होगी और ये यहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा जो हमारा सूबा है यहाँ पे एक तंजीम चलाती थी अवेयर गर्ल्स के नाम से। इसमें ये मुख्तलिफ जो नौजवान खवातीन हैं इनकी एम्पावरमेंट करती थी, इनको ह्यूमन राइट्स के ऊपर जो है ना मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स कोर्सेज ये जो है ना इनको कराए जाते थे, तो ये काफी मतलब जो नौजवान खवातीन हैं उनमें ये पॉपुलर थी। लेकिन साथ में ये कुछ यहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा में जो कबाइली इलाके पहले थे हमारे ट्राइबल एरिया के, वहाँ पे कुछ जो नौजवानों की एक तंजीम है पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट, जो ये कोई 2 साल पहले अचानक जो है मंजर-ए-आम पे आई, तो वो जो ट्राइबल एरियाज के अंदर जो मुख्तलिफ ऑपरेशन काउंटर टेररिज्म के जो ऑपरेशन हुए तो उसमें जो सिविलियन हलाकती हुई उसके खिलाफ ये तंजीम उठी और उसने काफी जो है हुकूमत को परेशान किए रखा। मुख्तलिफ इलाकों में इन्होंने जलसे किए, जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उनके खिलाफ ही जलसों में जो है ये बड़े नारे लगाते थे। तो उसमें फिर ये है कि जो गुलालाई इस्माइल है ये भी उसमें काफी एक्टिव थी। तो फिर कुछ अरसे में ऐसा हुआ कि ये जो पीटीएम के लोग थे इनके खिलाफ मुकदमात बने, गवर्नमेंट की तरफ से स्टेट की तरफ से उनके खिलाफ मुख्तलिफ केसेस बनाए गए। तो जो गुलालाई इस्माइल थी इसके ऊपर भी पीटीएम के जलसों में शिरकत करने की तकरीबन कोई इनके ऊपर 6 केसेस बने, तो उन 6 केसेस में ये 2 मरतबा गिरफ्तार भी हुई। लेकिन फिर एक अदालत की तरफ से इनको बेल हुई, तो तकरीबन 3 महीने पहले इनकी बेल हुई थी, ये रिहा हो गई थी।
अभी हम AFP समाचार एजेंसी से उनका एक बयान पढ़ रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें पाकिस्तान में जान का खतरा था इसलिए उन्हें पाकिस्तान छोड़ना पड़ा।
उनके वालिद जो प्रोफेसर इस्माइल है जिससे मेरी बात हुई थी वो भी यही बात कर रहे थे कि उनको अंदाजा हो गया था कि उनकी जो बेटी है गुलालाई इस्माइल उनकी जान को खतरा है, तो इस वजह से फिर वो अंडरग्राउंड हुई और 3 महीने तक वो बिल्कुल गायब रही और कल जो है ना ये खबरें आई कि वो अमेरिका पहुंच गई है। तो फिर उसने वो अपने इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया है कि वो उसने किसी एयरपोर्ट को इस्तेमाल नहीं किया है, यानी वो जहाज पे नहीं गई है।
जो उन पर इल्जाम है वो एंटी स्टेट हरकतें करने का है, तो उसको हम थोड़ा समझना चाहते हैं।
ये जो पीटीएम है पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट जो एक तंजीम थी उनकी सारी एक्टिविटीज यहाँ स्टेट के मुताबिक वो सारी एंटी थी, और साथ में ये था कि जो गुलालाई इस्माइल के वालिद जो प्रोफेसर इस्माइल है उनका खुद कहना है कि एक मुकदमा उनके ऊपर ये भी बनाया गया है कि यानी उनके वालिदैन यानी प्रोफेसर इस्माइल और जो गुलालाई इस्माइल है ये जो है ना ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इनको ये फंडिंग करते हैं, कहते हैं इनके ऊपर एक ये मुकदमा भी कायम हुआ है।
मानवाधिकार कार्यकर्ता गुलालाई इस्माइल ने पाकिस्तान छोड़ा, अधिक जानकारी दे रहे थे रिफतुल्ला खान।
बीबीसी इंडिया बोल।
कश्मीर में राजनीतिक शून्य कब तक? पिछले लगभग 50 दिन से भारत समर्थक राजनीतिक पार्टियों और अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता जेल में बंद हैं। विपक्ष की आवाज नहीं रहेगी तो कैसा होगा बहुदलीय जनतंत्र का भविष्य? इस बार इंडिया बोल में इसी विषय पर चर्चा होगी। कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए 21 सितंबर शाम 8 से 8:30 बजे तक मुफ्त फोन करें 1811-7000 और 1811-7001 पर।
बीबीसी इंडिया बोल।
श्रोताओं, अब समय है विवेचना का। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दिए जाने के बाद उनकी विरासत उनकी बेटी बेनजीर को मिली। हालांकि उनके छोटे भाई मुर्तजा भुट्टो आखिरी क्षणों तक उसे अपने नाम करने की कोशिश करते रहे। 20 सितंबर 1996 को रहस्यमय परिस्थितियों में उन्हें गोली मार दी गई। उनकी 23वीं बरसी पर उन्हें याद कर रहे हैं रेहान फजल आज की विवेचना में।
दुनिया में जब वंशवाद की बात की जाती है तो सबसे पहले कैनेडी वंश का नाम लिया जाता है, उसके बाद भारत के नेहरू गांधी वंश और पाकिस्तान के भुट्टो वंश का नाम आता है। इन तीनों वंशजों में एक और चीज समान है, वो है हिंसा। जॉन एफ कैनेडी, रॉबर्ट कैनेडी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जुल्फकार अली भुट्टो, बेनजीर भुट्टो और उनके भाई मुर्तजा भुट्टो, सभी की प्राकृतिक मौत नहीं हुई। मुर्तजा भुट्टो की कहानी शुरू होती है 4 अप्रैल 1979 से, जब सारी दुनिया को धता बताते हुए पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह जियाउल हक ने वहां के पहले निर्वाचित नेता जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़वा दिया था।
दिस इज रेडियो पाकिस्तान द न्यूज़, रेड बाय रियाज अहमद खान। A press note issued by the Ministry of Interior in Islamabad today says following conviction by the Lahore High Court in the Nawab Muhammad Ahmed Khan murder case and subsequent rejection of his appeal by the Supreme Court, Zulfiqar Ali Bhutto was hanged to death at 2 o'clock this morning in Rawalpindi District Jail. Earlier, mercy petitions filed on his behalf were rejected by the President after these had been processed in accordance with the normal procedure.
भुट्टो की बेटी बेनजीर ने पाकिस्तान में ही रहकर जिया के खिलाफ संघर्ष करने का फैसला किया, लेकिन उनके दोनों बेटों शहनवाज और मुर्तजा ने पाकिस्तान के बाहर जाकर अपने पिता को बचाने की मुहिम चलाई, लेकिन जिया पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। भुट्टो की मौत के बाद उसका बदला लेने के लिए भुट्टो के दोनों बेटों ने हथियार उठा लिए और अल जुल्फकार की स्थापना की। पहले दोनों अफगानिस्तान और सीरिया में साथ साथ रहे, लेकिन बाद में शहनवाज फ्रांस में अपनी पत्नी के साथ रहने लगे। 1985 में शहनवाज अपने फ्लैट में मृत पाए गए और संदेह व्यक्त किया गया कि उन्हें जहर दिया गया है। उनकी मौत पर उनकी बड़ी बहन बेनजीर भुट्टो ने कहा,
I don't believe in the theory of a family feud leading to the death of my brother. He was a political activist, an avowed opponent of martial law.
वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे और मार्शल लॉ के धुर विरोधी भी। वो जिस तरह की जिंदगी जी रहे थे वो काफी खतरनाक थी। मेरा मानना है कि उनकी मौत को एक व्यापक राजनीतिक संदर्भ के रूप में देखा जाना चाहिए।
बेनजीर भुट्टो के शब्द। जनरल जियाउल हक की हवाई दुर्घटना में मौत के बाद जब बेनजीर प्रधानमंत्री बनी तो मुर्तजा सीरिया में ही रह रहे थे। कहा यह गया कि अभी उनके खिलाफ पाकिस्तान में विमान अपहरण का मुकदमा चल रहा है, इसलिए उनका वहां आना ठीक नहीं होगा। लेकिन मुर्तजा भुट्टो इस घटनाक्रम से खुश नहीं थे। उनके एक पुराने दोस्त और मशहूर पत्रकार श्याम भाटिया ने अपनी किताब गुड बाई शहजादी में लिखा है,
मुर्तजा से मेरी पहचान ऑक्सफोर्ड के जमाने से थी। दरअसल जब हम भारत और पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर शोध कर रहे थे तो हमारे सुपरवाइजर एक हुआ करते थे। 1989 में वो मुझे दमिश्क के शेरटन होटल में टकरा गए और हमने सुबह 6 बजे तक एक साथ बात करते हुए 11 घंटे बिताए। मुर्तजा ने मुझे बताया कि उनके पिता जुल्फिकार ने बेनजीर को नहीं बल्कि उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया था। 1977 में भुट्टो ने उन्हें ही लड़काना चुनाव क्षेत्र की देखभाल के लिए चुना था। इस बात की पुष्टि भुट्टो के करीबी यूसुफ बुच ने अपने पत्रकार दोस्त खालिद हसन से भी की थी। उनका कहना था कि भुट्टो अपनी बेटी को राजनीति की पथरीली जमीन पर नहीं डालना चाहते थे। उनका बस चलता तो वो उन्हें पाकिस्तान विदेश सेवा का अधिकारी बनाते।
लेकिन बेनजीर की मां नुसरत भुट्टो ने अपने बेटे का पक्ष लिया। उनकी वापसी के लिए उन्होंने बाकायदा मुहिम चलाई।
शहीद भुट्टो की आवाज कैसी थी? मुर्तजा जैसी थी। शहीद भुट्टो कितने वकार से चलते थे। शहीद चेयरमैन के आंखों की चमक आपको याद है? आप वही आवाज सुनना चाहते हो? आप वही पुरवकार चाल देखना चाहते हो? आप शहीद चेयरमैन की आंखों की चमक देखना चाहते हो? थोड़ा सा इंतजार कर लो, वो आ रहा है।
मुर्तजा के वापस आते ही उनके गृह नगर लरकाना में पुलिस ने उनके समर्थकों पर गोली चला दी। उनकी मां नुसरत भुट्टो उससे इतनी व्यथित हुई कि इसके लिए उन्होंने अपनी पुत्री बेनजीर को दोषी माना। وہ ان کو بے نظیر کے بجائے مسز زرداری کے نام سے پکارنے لگی۔ مرتضیٰ اور ان کی بہن بے نظیر اور بہنوئی زرداری کے بیچ کٹوتا بڑھنے لگی۔ مرتضیٰ کی زبان تیکھی ہوتی چلی گئی اور ان کا نشانہ بنی تتکالین سرکار۔
میں ان کو کہتا ہوں، پھر کہتا ہوں، ذرا سوچ لو، حساب کتاب رکھو اپنا، ذرا خیال کرو، میرے کارکنوں کو ہاتھ نہ لگاؤ، ان کو تنگ نہ کرو، اس لیے میں وہ عیسائی نہیں ہوں کہ ایک طرف سے تھپڑ مارو میں کہوں گا دوسری طرف بھی مار دو، کوئی کسی نے ہمارے تھپڑ مارا تو ہم ٹانگیں توڑ دیں گے ان کی، ہمارے خلاف جو بھی کرنا چاہتے ہو ذرا سوچ سمجھ کے کرو۔
20 ستمبر 1996 کو انہوں نے ایک سنواد داتا سمیلن کیا اور پولیس پر زیادتیاں کرنے کا آروپ لگایا۔
پولیس آفیسر are not fit to wear the uniform of the state. They are criminals. They have committed genocide in Karachi.
پولیس ادھیکاری راج کی وردی پہننے لائق نہیں ہے، وہ اپرادھی ہیں، انہوں نے کراچی میں نرسنہار کیا ہے، ان کا سمے اب سماپت ہونے والا ہے۔ میں انہیں چنوتی دیتا ہوں کہ وہ مجھے گرفتار کریں، اگر وہ اس کا راجنیتک پرنام جھیل سکنے کی ہمت رکھتے ہیں تو۔
مرتضیٰ بھٹو کے شبد، 20 ستمبر 1996، شام کو 8 بجنے کو آئے تھے۔ مرتضیٰ بھٹو ریلی اور سنواد داتا سمیلن کرنے کے بعد اپنے گھر واپس لوٹ رہے تھے۔ فاطمہ بھٹو اپنی کتاب سانگس آف بلڈ اینڈ سورڈ میں لکھتی ہیں،
میری ماں رسوئی میں کھانا بنا رہی تھی، میں اپنے چھوٹے بھائی زلفی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے شن کچھ میں ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ تبھی میری ایک دوست نوریا کا فون آیا۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ مجھے ایک گولی کی آواز سنائی دی، اس کے بعد تو گولیوں کی جھڑی سی لگ گئی۔ میں نے نوریا سے کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد فون کرتی ہوں۔ میں زلفی کو گود میں لیے ڈرائنگ روم میں بھاگی، ممی بھی دوڑتی ہوئی وہاں پہنچ گئیں۔ ہم وہاں آدھے گھنٹے تک بیٹھے رہے۔ ہم نے اپنے چوکیدار کو دیکھنے باہر بھیجا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ باہر پولیس پھیلی ہوئی ہے، اس نے مجھے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیا۔ پولیس کہہ رہی تھی کہ باہر ڈکیتی پڑی ہے، حالات سدھرنے تک تم گھر میں ہی رہو۔
جیسے جیسے سمے بیتتا گیا، فاطمہ اور گنوا بھٹو کی پریشانی بڑھتی چلی گئی۔ جب ان سے برداشت نہیں ہوا تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اپنی بوا وادی کو اسلام آباد فون کرنے جا رہی ہیں۔ بعد میں انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا،
You know, there had been a huge build-up around our house. We were being surrounded by armored tanks, by policemen. We'd had enough and I thought, I'm going to call my aunt because perhaps they've arrested my father, perhaps they've done something. I'm going to call and ask what's up.
میرے گھر کے آس پاس کافی پولیس تعینات تھی۔ جب بہت دیر تک میرے پتا نہیں آئے تو میں نے اپنی بوا کو فون کرنے کا فیصلہ کیا۔ کافی دیر بعد ان کے پتی آصف زرداری فون پر آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں بوا سے بات نہیں کر سکتی۔ میں نے جب یہ کہا کہ یہ بہت ضروری ہے تو انہوں نے کہا کہ وہ فون پر نہیں آ سکتی۔ جب میں نے بہت زور ڈالا تو انہوں نے بے حد ٹھنڈے پن سے کہا کہ تمہیں پتا نہیں کہ تمہارے پتا کو گولی لگ گئی ہے۔
فاطمہ بھٹو کے شبد، اپنے بھائی کی موت کی خبر سن کر پردھان منتری بے نظیر بھٹو ترنت کراچی پہنچی اور ننگے پیر اپنے مرت بھائی کو دیکھنے مڈ ایسٹ اسپتال گئیں۔ بعد میں لڑکانہ میں انہوں نے ایک بھاو ویوہل بھاشن دیا۔
میر مرتضیٰ بھٹو اس دنیا سے رخصت تو ہوگا لیکن وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس لیے شہید کبھی نہیں مرتے ہیں۔
مرتضیٰ بھٹو کے سمرتھکوں نے آروپ لگایا کہ مرتضیٰ کو کراچی کی پولیس نے یوجنا بنا کر مارا ہے۔ پولیس نے پہلے سڑک کی بتیاں بجھا دیں اور پھر مرتضیٰ کے قافلے پر گولیاں چلائیں۔ مرتضیٰ کی موت کئی سوال چھوڑ گئی جن کا جواب آج تک نہیں دیا جا سکا ہے۔ 5 دسمبر 2013 کو اس ہتیا کانڈ سے جڑے کئی ویکتیوں کو بری کر دیا گیا، لیکن مرتضیٰ کی بیٹی فاطمہ اس کے پیچھے ستہ سے جڑے کچھ لوگوں کو دوشی ٹھہراتی ہیں۔
This extraordinary family that has suffered and has played a part in the violence that makes Pakistan the state it is today.
ذوالفقار علی بھٹو کو 1979 میں مارا گیا لیکن انہیں کبھی نیائے نہیں ملا۔ شہنواز 1995 میں مارے گئے لیکن کسی کو بھی کبھی ان کی موت کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ میرے پتا مرتضیٰ 1996 میں مارے گئے اور 2009 میں پاکستان کی ایک عدالت نے یہ کہا کہ انہیں کسی نے نہیں مارا۔ 2007 میں بینظیر راولپنڈی میں ایک ریلی میں ماری گئی اور اس پر کوئی پولیس رپورٹ بھی نہیں کی گئی۔
یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، تم کتنے بھٹو
ریحان فضل، بی بی سی دلی۔
ریحان فضل کی یہ ویوچنا آپ کو کیسی لگی؟ شروتاؤں ہمیں ضرور لکھیں۔ اور اب سمے ہے دلی سے چھپنے والے اخباروں کے بارے میں جان لینے کا۔ اخباروں کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں آدرش راٹھور۔
جی شاہد، لگ بھگ سبھی اخباروں میں جو کل وت منتری نرملا سیتارمن نے جو ایک راحت پیکیج کی گھوشنا کی ہے، کارپوریٹ جو ٹیکس کم کیے ہیں اس کو کس طرح سے کور کیا گیا ہے، جلدی سے پہلے یہ نظر ڈال دیں۔ دا اکانومک ٹائمس لکھتا ہے ہاؤڈی انویسٹر، یہ اسی شیلی میں ہے جو ہیوسٹن میں کل رویوار کو امریکہ کے ہیوسٹن میں پردھان منتری نریندر مودی جی۔ اور اسی کے ساتھ دینک جاگرن لکھتا ہے کہ ادیوگ جگت کو ملی سب سے بڑی سوگات، اور دا ٹائمز آف انڈیا لکھتا ہے تھرڈ بجٹ ان 7 months اینڈ دا بگیسٹ۔ یہ بات کی گئی ہے کہ جس طرح سے لگاتار 4 پیکیج ملے ہیں الگ الگ کھیتر میں، ہاں، اور اس میں اہم بدلاؤ کیے گئے ہیں۔ جو بجٹ پیش کیا گیا تھا اس کے پراودھانوں کو پلٹ دیا گیا ہے ان پچھلے کچھ الگ الگ گھوشناؤں میں، اس کا اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ پنجاب کیسری لکھتا ہے کہ بوسٹر ڈوز سے جھوم اٹھا بازار۔ جی اس کے علاوہ میرے پاس اس سمے ہے دینک بھاسکر، اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو پورو کیندری منتری اور بھاجپا نیتا ہیں سوامی چنمے آنند، جب چھاترا سے دشکرم کے آروپ کو لے کر جب ان کی گرفتاری ہوئی ہے اور پوچھ تاچھ ہوئی ہے تو اخبار کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں شرمندہ ہوں۔ اس کے علاوہ پرسوں رات کو جو گھٹنا کرم ہوا تھا پشچم بنگال کی راجدھانی کولکاتہ کی جادو پور یونیورسٹی میں، بابل سپریو کیندری منتری جب ان کا گھیراو ہوا تھا اور انہیں چھڑانے کے لیے راجیہ جگدیپ دھنکڑ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے تو ترنمول کانگریس نے یہ کہا تھا کہ وہ بنا بتائے ہی چلے گئے تھے، لیکن دا اسٹیٹس مین نے ان کا انٹرویو چھاپا ہے اور اس میں دھنکڑ کے حوالے سے یہ بات کہی ہے کہ سرکار کا دعویٰ غلط ہے کہ میں نے ان کو اندھیرے میں رکھا، میں نے ان کو بتایا تھا جادو پور یونیورسٹی جانے سے پہلے۔
ٹی ایم سی نے بیان جاری کیا ہے آدرش، کل ہی کیا تھا، اور اس دوران انہوں نے بتایا تھا، اس بیان میں لکھا تھا کہ جب راجیہ جا رہے تھے تو انہوں نے راستے میں ممتا بینرجی مکھیہ منتری جو ہے ان کو فون کیا تھا۔
جی تو لیکن ترنمول کانگریس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہمیں اندھیرے میں رکھا گیا، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر ہے، انٹرنیٹ پر روک نہیں کورٹ بولا سمویدھان میں حق۔ دراصل کیرل ہائی کورٹ میں ایک یہ سنوائی ہو رہی تھی کہ تب کیرل ہائی کورٹ نے ایک اہم فیصلے میں کہا کہ انٹرنیٹ پراپت کرنے کا ادھیکار جو ہے وہ سمویدھان میں جو شکشا کا ادھیکار ہے اور پرائیویسی کا ادھیکار ہے اس کا حصہ ہے۔ جی اور اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے جو ڈرافٹ رول ہیں وہ تیار ہیں، یہ سرکار کا کہنا ہے۔ مدراس ہائی کورٹ کو کیندر سرکار نے کہا ہے کہ جلد ہی سوشل میڈیا کو کیسے ریگولیٹ کرنا ہے اس کے لیے جو نیم ہے ان کا خاکہ ہم نے تیار کر لیا ہے۔
اخباروں کی سمیکشا کے لیے بہت بہت دھنیواد آدرش۔ اب سنتے ہیں کھیل سماچار۔
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں سوریانشی پانڈے۔ باکسنگ کے رنگ میں آج مقابلہ ہوگا ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ میں امت پنگل کا ازبیکستان کے شاکھو بیدیدن جوئیروف کے ساتھ۔ یہ مقابلہ ورلڈ چیمپئن شپ کا فائنل کا مقابلہ ہے اور اس ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچنے والے امت پنگل پہلے بھارتیہ پروش ہیں۔ تو وہیں کرکٹ کی اور اگر نظر ڈالی تو آئی پی ایل فرینچائزی رائل چیلنجرز بنگلورو کے ٹیم ڈائریکٹر مائک حسن نے صاف کہہ دیا ہے کہ ٹیم وراٹ کوہلی کو کپتانی سے ہٹانے کے بارے میں بالکل نہیں سوچ رہی۔ حسن نے کہا کہ وراٹ ٹیم کے مضبوط پکش ہیں اور لگاتار کپتانی کرنے کے کارن وہ جانتے بھی ہیں کہ ہمیں کن کھیتروں میں سدھار کی ضرورت ہے۔ اور پورو کپتان محمد اظہرالدین نے حیدرآباد کرکٹ ایسوسی ایشن کے ہونے والے چناؤ میں ادھیکش پد کے لیے نامانکن داخل کر دیا ہے۔ اس سے پہلے سال 2017 میں بھی انہوں نے نامانکن بھرا تھا لیکن تب ضروری کاغذات جمع نہیں کر پانے کی وجہ سے ان کا پرچہ نرست کر دیا گیا تھا۔
اور اب چلتے چلتے مکھیہ سماچار ایک بار پھر آدرش راٹھور سے۔
بی بی سی سماچار۔ بھارت سرکار نے کارپوریٹ کمپنیوں کو ٹیکس میں چھوٹ دینے کے فیصلے کے بعد شکروار کو کئی ادیوگوں کو جی ایس ٹی میں بھی راحت دی ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب اور سنیکت عرب امیرات میں اپنے سینکوں اور میسائل ڈیفینس سسٹم کی تعیناتی کا اعلان کیا ہے۔ عراق کے کربلا شہر کے پاس ہوئے ایک بم دھماکے میں کم سے کم 12 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ یمن کے ہوتی ودروہیوں کے ایک ادھیکاری نے کہا ہے کہ اگر سعودی عرب کے نیتریتو والی گٹھ بندھن سینا حملے کرنا روکتی ہے تو وہ بھی ڈرون اور میسائل حملے کرنا بند کر دیں گے۔ مصر کی راجدھانی قاہرہ کے تحریر چوک کے پاس پردرشنکاریوں کے چھوٹے چھوٹے سموہ جٹے ہیں جو سرکار ویرودھی نعرے لگا رہے ہیں، یہ نظارہ درلبھ ہے۔ بی بی سی سماچار۔
نمسکار، بھارت میں آج اتنا ہی۔ اسٹوڈیو کا تکنیکی پکش سنبھالا راجیش چوہان نے۔ آپ سے اگلی ملاقات شام 7:30 بجے بی بی سی انڈیا بول میں ہوگی۔ محمد شاہد کو دیں اجازت، نمسکار۔